दादाजी गांव जाने को लेकर उत्साहित थे। वहां जाकर वे उस पिशाच वाले पेड़ को, भूत को और नानी माँ से झगड़ा करने वाली उन सब महिलाओं को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जिनके किस्से नानी माँ हर रोज दादाजी को सुनाती थी। वे सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी। नानी माँ मुस्कुराकर सबकी ओर देखते हुए बोली, बल्कि हम तो कहते हैं, आप शहर के लोगों ने गांव की ताज़ी हवा कहाँ देखी है, क्यों ना अगले महीने आप सभी हमारे गांव का चक्कर लगाइए। नानी माँ के ये बोलते ही आहान और ध्रुव दोनों ने नारा लगा दिया, हिप हिप हुरने, गांव में तो हमें बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच नानी माँ, आहान ने कहा, हम तो मौका देख रहे थे कि कब आप हम सबको इन्वाइट करें। इतना बोलकर आहान ने नानी माँ के माथे को चूमा और नानी माँ थोड़ी सी शर्माने लगी। फिर नानी माँ की नज़र बिना किसी भाव के दूर खड़े मारिया और टाइगर पर गई। तुरंत नानी माँ मारिया के पास पहुंची और उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, अरे बिटिया, तुम क्यों इतनी उदास खड़ी हुई हो, तुम्हें भी आना है। इतना बोलकर नानी माँ ने मारिया को भी इन्वाइट कर दिया। अब मारिया के चेहरे पर हल्की सी मुश्किल से दिखने वाली मुस्कुराहट थी। दूसरी ओर आस्था जल्दी ही अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। नहाकर जैसे ही आस्था फटाफट बाहर निकली और तौलिए से अपने गीले बालों को सुखाने लगी, अरमान ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी कि कल रात कहाँ था। कहीं ना कहीं अरमान समझ चुका था कि आस्था को पता है कि वो कमरे में नहीं था, तभी तो वो नानी माँ के कमरे में गई थी। लेकिन आस्था के कोई सवाल ना पूछने पर अरमान हैरान था और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आस्था से पूछ ही लिया, क्या हुआ, क्या वो कोई सवाल नहीं करेगी कि कल रात कहाँ गया था। अरमान की बात सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुराई और पीछे घूमकर अपने हाथ अरमान के गले में डाल दिए। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए बोली, हमें पता है कि आप कल रात कमरे में नहीं थे, लेकिन हम वो टिपिकल बीवी नहीं हैं जो अपने पति पर शक करेंगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है, अगर आप कहीं गए होंगे तो किसी ज़रूरी काम से ही गए होंगे, और सबसे बड़ी बात, हमारी आँख खुलने के बाद आप हमारी आँखों के सामने थे, तो हमें आपसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि हम आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। अरमान की बात खत्म होते ही उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट थी। आस्था की ये बातें अरमान को इस बात का एहसास दिला रही थी कि आस्था उससे कितना प्यार करती है, कितना उस पर भरोसा करती है। जल्दी ही अरमान ने आस्था को कमर से कसकर पकड़ लिया और उसके बाद इसने अपने होंठ आस्था के होंठों से जोड़ दिए और स्मूथली किस करने लगा। आस्था भी अरमान का प्यार पाकर सब कुछ भूल गई थी, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद आस्था को एहसास हुआ कि अगर वो इसी तरह अरमान के साथ प्यार करती रही तो पक्का आज वो फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जैसे तैसे उसके पति ने उसे कॉलेज भेजने के लिए माना है और आस्था इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी, क्योंकि आस्था के लिए अपना पूरा अतीत जानने की और अपने अपराधी को जानने की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। आस्था ने कसम खाई थी कि जिस किसी ने भी उसकी नानी माँ की जिंदगी में अंधकार भरा, उसके पूरे बचपन को छीना, उसके माँ बाप को बेरहमी से मार डाला, उस इंसान को वो ढूंढेगी और उसे ऐसी सजा देगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जल्दी ही आस्था ने अरमान को थोड़ा सा धक्का दिया और सीधी खड़ी हो गई। आंखें मटकाते हुए बोली, ये आप क्या करने लगे हैं, आपने देखा नहीं हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आप हमें इन सब चीज़ों में फंसा रहे हैं। इन सब चीज़ों का मतलब आस्था का किस करने से था। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर शरारती अंदाज में बोला, अच्छा मैं आपको किन सब चीज़ों में फंसा रहा हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी। जैसे ही अरमान ने आस्था को छेड़ने के लिए ये बोला, आस्था के गाल एकदम लाल हो गए और अरमान आस्था के लाल गालों को देखकर जोरों से हंसने लगा। आस्था ने आज पहली बार अरमान को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। अरमान इस वक्त हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। आस्था कितनी देर तक अरमान की हंसी में खो गई थी और मन मन में बोली, काश ये हमेशा इसी तरह से हंसते रहें और उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो। अरमान ने देखा कि आस्था उसे देख रही है, उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया और अपना सर हल्का खुजलाते हुए बोला, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर अरमान फटाक से उस कमरे से बाहर निकल गया। आस्था सोचने लगी, अरे वाह, ये कैसा पति है मेरा, हंसने पर भी शर्माता है। ये बोलकर आस्था मुस्कुराने लगी और फटाफट से अपने बालों को कंघी करने लगी। वहीं दूसरी ओर रश्मि, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, दादाजी और नानी माँ सभी आस्था का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे सब आस्था को कॉलेज छोड़ने जाना चाहते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आस्था के लिए ये कितनी बड़ी बात है। दादाजी ने पहले दिन ही आस्था के सपने की गहराई के बारे में जान लिया था कि वो किस तरह से बेताब होकर अपना सपना पूरा करना चाहती है, और अब तो आस्था के साथ एक और खुशी जुड़ी हुई थी, तो सभी हर तरह से उसे खुश रखना चाहते थे, आस्था की पूरी तरह से केयर करना चाहते थे। जैसे ही आस्था तैयार होकर नीचे आई और उसने उन सबको इस तरह तैयार देखा तो वो कन्फ्यूज हो गई और एक्साइटेड होकर बोली, आज सब कहीं जा रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी आप सब तैयार हो गए।
तभी आहान चुनबुलेपन में बोला, अरे भाभी, हम आपको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तब आस्था कन्फ्यूजन से बोली, लेकिन देवर जी, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम कहीं जंग पर थोड़ी ना जा रहे हैं कि आप सब हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और हम कोई छोटे बच्चे हैं क्या? आप सब तो हमें इस तरह की फीलिंग करवा रहे हैं मानो हम बहुत छोटे बच्चे हैं और हमारा आज स्कूल का पहला दिन है कि पूरा परिवार छोड़ने के लिए जा रहा है। आस्था के ये बोलते ही दादाजी मुस्कुरा दिए और सॉफ्ट वॉइस में बोले, मेरी बच्ची, हमारे लिए तो आप छोटी बच्ची ही हैं और हम सबका मन है आपको छोड़ने जाने का। बस हमने कह दिया तो कह दिया, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। बस अब दादाजी की बात सुनकर आस्था ने दादाजी को गले से लगा लिया और सब नानी माँ का आशीर्वाद लेकर बोली, ठीक है आप सब चलिए, लेकिन आप सब हमें लेने नहीं आएंगे क्योंकि वापसी में हम रौनक और राधिका दीदी के साथ आएंगे। आस्था के ये बोलते ही सब हैरानी से आस्था को देखने लगे। वहीं रौनक का नाम आते ही आहान के दिल में कुछ गुदगुदी सी हुई और वो तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, रौनक, उस आफत हवा हवाई के साथ? लेकिन भाभी, वो तो मेंशन से चली गई है ना, तो आप उस हवा हवाई को जाकर लेकर क्यों आना चाहती हैं? तभी आस्था आहान को टोकते हुए बोली, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आहान जी, अभी फिलहाल हमें देर हो रही है, प्लीज आप हमें कॉलेज के लिए छोड़कर आइए। इतना बोलकर आस्था ने एक नजर पति की ओर देखा। अरमान तो पहले ही आस्था के साथ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था और अरमान जल्दी आस्था को अपनी शानदार गाड़ी में बिठाया और बाकी सब अपने अपने अलग अलग गाड़ियों में जाने लगे। वहीं आस्था बिल्कुल अरमान से चिपक कर बैठी हुई थी। वहीं अरमान को पहली बार आज वो सीन याद आया जब आस्था पहली बार उसके साथ गाड़ी में बैठी थी और आस्था एक तरफ खिड़की से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी और अरमान और आस्था के बीच में इतनी जगह थी कि आराम से 2 से 3 आदमी आराम से वहां बैठ सकते थे। लेकिन आज तो आस्था खुद बखुद अरमान से इस तरह से चिपक कर बैठी हुई थी कि इतनी सी भी हवा पास होने की जगह नहीं थी।
वहीं मारिया और टाइगर अरमान की गाड़ी की फ्रंट सीट पर थे। मारिया गाड़ी ड्राइव कर रही थी और टाइगर बैठा हुआ मारिया को देख रहा था। जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से उन दोनों में एक दूसरे को टशन देना कम कर दिया था। हालांकि पहले वे एक दूसरे को अपनी ताकत आजमाते थे, एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होने का दावा करते थे और एक दूसरे से कंपटीशन करते करते कितने ही लोगों की जान ले लिया करते थे, लेकिन शादी होने के बाद दोनों खुद को इक्वल समझने लगे थे और दोनों के बीच ना चाहते हुए भी एक मजबूत रिश्ता बन चुका था जो कभी भी नहीं टूटने वाला था। वहीं अरमान ने देखा कि आस्था उसे इस तरह से चिपकी हुई बैठी हुई है तो अरमान के शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसका शरीर पूरा तपने लगा हो। तब अरमान ने जल्दी ही गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया और आस्था को तुरंत अपनी गोद में बिठा लिया और उसके पेट पर हाथ रखकर अरमान के इशारे का आभास हुआ। अब तो आस्था शर्म से पानी पानी हो गई थी और वो तुरंत अरमान की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान ने उसे कसकर पकड़े हुआ था और फुसफुसाते हुए बोला, आपको इस तरह से मुझसे दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेहद करीब रहें, बेहद करीब। और रही बात कॉलेज की, कॉलेज अब आपके लिए इतना सेफ है कि आप आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे और मैंने सारी सेटिंग कर ली है, स्पेशली आपको ज़्यादा क्लासेस दी जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर करनी है, आप ये बात जानती है ना? इतना बोलकर अरमान आस्था को एकदम बेहतर फील कराने लगा था और कितनी देर तक वो उसे प्यार करता रहा, जब तक कि मारिया की आवाज़ नहीं आई कि कॉलेज आ गया है। तब जाकर अरमान ने आस्था को छोड़ा। जल्दी ही आस्था अरमान की ओर मुस्कुराकर देखते हुए गाड़ी से नीचे उतरने लगी थी, लेकिन अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और उसे रोकते हुए बोला, अगर आप इस तरह से कॉलेज में जाएंगी तो सब आपसे काफ़ी सारे सवाल कर सकते हैं। तब आस्था हैरान हो गई थी और नासमझी से अरमान की ओर देखकर बोली, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कपड़े तो अच्छे पहने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग हमें ही देखेंगे? तब अरमान ने आस्था की गर्दन की ओर इशारा किया, जहां पर अरमान के प्यार करने की वजह से एक बड़ा सा लाल निशान बन गया था। अब जैसे ही आस्था को अरमान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन में उसकी नेक पर बने हुए मार्क्स को दिखाया, आस्था हैरान हो गई थी और वो मुँह फुलाते हुए अरमान को देख कर बोली, ये क्या किया आपने? हाँ, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, हम इसे कवर कैसे करेंगे? आप ये क्या करते हैं? आप सच में आप बहुत बुरे हैं। इतना बोलकर आस्था ने मुंह फुला लिया था और अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लिया था, जिस तरह से कोई छोटा बच्चा मुंह फुलाता है। आस्था इस तरह से करती हुई बड़ी ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। वहीं अरमान तुरंत थोड़ा सा आगे आया और आस्था के दुपट्टे को अच्छे से उसने आस्था की नेक से लेकर गर्दन तक गोल गोल कवर कर दिया था, जिससे अब आस्था का कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा था। तब अरमान धीमी आवाज़ में बोला, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना दुपट्टा इस तरह से रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके बाद हम आपका ये मार्क्स घर जाकर छुपा सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुछ नए मार्क्स भी बना सकते हैं। जैसे ही अरमान ने थोड़े से शरारत भरे लहजे में ये कहा, आस्था की आंखें फैल गई थीं और फिर अरमान की ओर देख कर नाखुश होकर बोली, आप ना, आप बहुत बदमाश हो गए हैं। आप जानते हैं, आप जब पहले वाले थे ना, पहले वाले खड़ूस, एरोगेंट, एकदम खतरनाक से अरमान सिंघानिया,
आप ना वही ठीक थे, कम से कम आप ऐसी हरकत तो नहीं करते थे। ये बोलकर आस्था अरमान को देखने लगी थी। तब अरमान मुस्कुराया और प्यार से बोला, आप चाहें तो मैं फिर से वही खतरनाक अरमान सिंघानिया बन सकता हूँ, क्योंकि अब अरमान सिंघानिया को बदलने की ताकत अगर किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया में है। इतना बोलकर अरमान ने आस्था के माथे को चूम लिया था। और जल्दी ही आस्था को कॉलेज में छोड़ने के बाद अरमान एकदम डार्क चेहरे के साथ गाड़ी में बैठ गया और टाइगर की ओर देखकर बोला, पता लगाओ वीर रायचंद अबीर सिंह राठौर को कहाँ लेकर गया है। जैसे ही अरमान ने गाड़ी में बैठते ही ये बोला, टाइगर तुरंत बोल पड़ा, ऑलरेडी पता लगा लिया है, वे किंग देव ने लोकेशन सेंड कर दी है, अब आप बताइए क्या करना है। अरमान तिरछा मुस्कुराकर बोला, चलो उनके अड्डे पर चलो। अरमान के ये कहते ही टाइगर ने किलर लुक दिया था और जल्दी ही मारिया भी तिरछी मुस्कुराई। फाइनली उन्हें आज कितने ही दिनों के बाद फाइटिंग करने का मौका मिल रहा था। मारिया और टाइगर दोनों ही ऐसे थे जिन्हें मारपीट का कुछ ज्यादा ही शौक था, एक तरह से कहा जाए तो उनकी आदत में शामिल था। और जब से अरमान सिंघानिया को मोहब्बत हुई थी तब से अरमान ने काफी कम मारपीट कर दी थी। वो अब फिलहाल जल्दी ही वे लोग वीर रायचंद के ठिकाने की ओर रवाना हो चुके थे।